they thought that Krishna might have known that he cannot uchcharan his mantra, uchcharan, he tell the hints.
Utter.
And by uttering mantra, mantra shakti goes away.
Yeah.
We should not tell anyone this or any other mantra. Only Mahamantra we can tell or do like uchcharan. So, they close their eyes. Krishna told that shut up your eyes. Then they shut up their eyes. And then Krishna told that close means to open.
Close open. And then open.
Close means to... Yes. Now you can open your eyes. They opened their eyes. And at once they saw all the cows and all the friends with Krishna and Baldev are under that tree. They are sitting in the circles and they are taking their fruits. And cows are sitting in the hairy
shade
of that tree. And they are doing like this, paburi.
Yeah.
Like that. They are doing. They were thinking that what we have seen, that was only our, we have seen, it was true, or we are seeing in dream, what it was, we cannot say. Krishna told that, no. It was real. Those persons who had left Krishna and gone behind Krishna, back side of that is, there are two kinds of jivas. Those who are unmukh to Krishna and those who are dimukh to Krishna. Understand?
Yeah. In front.
Those who are in front
and behind, vimukhi. Mukhya's front.
Those who are behind, they are Baddhaji. And those who are in Sanmukh, they are Mukhaji. Mukhaji serves Krishna. And the Vimukhaji, they are what?
Separate.
They are in Maya. So if a man go means indriya.
Senses.
Senses,
eyes.
11 senses. And 5 are jnana senses.
Knowledge acquiring and 5 working.
So those go means knowledge. The 5 and 5 and 1 month, 11 indriyas. The persons who are vimukh, their indriyas are doing against the seva of Krishna. And they go more and more deep in Maya. And at last they went in hell, they go in hell. And they are ruined. If they are going towards Mayabad, forever they have lost something. They cannot be in front of Krishna at any time. That is called Sarvanash. Sarvanash, you know?
No.
Everything lost, it is called Sarvanash. So like cows, in calamity, in this Maya world, we are burning in Maya, Tritap, you know? Tritap means
three world,
three
planetary system, no?
We are burning in three, Sattvic, Rajasic, and Tamasic, Tap.
Eh? Papa, I don't know that word.
Papa means...
Same as guna, like that.
Papa means the burning, burning position.
Like misery.
Misery. By misery. And in that misery, like cows and friends, if we pray, Krishna will at once come. And we will see that no this one. We will see that we are in Guru and serving Krishna. No, there is no choice of Maya. And if we don't call Krishna, we will be encircled, rounding.
Samsara. Samsara Dava analogy.
Samsara Dava.
This is.
So this is the story written in Srimad Bhagavatam. That was behind in the shade of that tree that is when Bhandirva. Once Nanda Maharaj from Khelanban, that is in Shergarh. Shergarh, you know? Khelanban. Krishna, Krishna at that time was a 4 or 5 years. Nanda Maharaj, taking Krishna in his laps, he wanted to go in his cow herd, where old persons were with cows. At that time, Bhandirban was very, very green and very dark. It was the time of very morning. Itself that forest was very dark. No sun rays were entering in that forest. And besides, clouds were there. So it became more and
more
deep there. Nanda Maharaj then reached there and left Krishna. He said that now it is a raining day. It may be rain. And some drops of rain were falling. And it became so dark and dark. There became very cloudy air.
Rain.
At that time, he could not understand what to do, where to take rest, shelter. At the meantime, he saw that very little lady, very beautiful, came there. He saw that, this is the daughter of Vrishabhanu Maharaj. He told that girl, "Hey, you are the daughter of Vrishabhanu Maharaj. Why you have come here?" But he could not tell anything. He only done like this. And Krishna himself came in the arms of Radhika. Nanda Baba could not do anything.
He went like this.
Krishna went in her lap, she took and entered in deep jungle. And she became Kishori at the age of 14. And Krishna became 16. And very beautiful Vedika was there. Vedika means like Chamsara.
Throne.
Like throne of
clay.
One of our
palace. Like that?
Huh?
Like palace? Small? No.
A very
platform.
Platform.
Yes.
Like a platform. Round. Round tree. She can there and they become both Kishore. Kishore Roop, you know?
Yes. From the ages of 11 to 15, Kishore.
Radhika is best, is 13 and a half, and Krishna is 16. Very beautiful. At once, Kaka Kakitra and all other Sakhi came there. And Brahma from Pushkar, doing tapasya, yagya, he was returning. And from his sky he saw that Krishna is here, and Srimati Radhika is here. So by the wishes of Krishna, pulled down Brahma, and Brahma came, and he did namaskar to Krishna, and parikrama of Krishna and Radhika. And he told that, I want to do your marriage here. So he used to utter Veda's mantras of marriage. And he, the one of Radhika and Krishna.
Yeah, tied together their kopra.
And told Krishna to take the hands of Radhika in his hand. And he took, he burned fire, and he did the marriage system, what priest does. And after doing marriage, again he parikrama and went to Brahmaloka. And again, all sakhis vanished. Radhika became very small, and Krishna became like a boy, and she took in his hand, her hand. And again, she went to her, but Nanda was still standing to see Krishna where Krishna has gone. And again he gave in the hands of Nanda Baba. And then Nanda Baba became very pleased by thinking that what has done. Now he became this and taking Krishna in hand. Above this occurrence was there at Mandir.
गुरु जी के सामने किसी को आशीर्वाद देना, उसको सांत्वना देना है या उसको शासन करना है तो मैं देखूंगा और गुरु जी के सामने। तो इसका मतलब है कि गुरु जी को वो मनुष्याधार मनुष्य मानता है जिसका उसके चरणों में अपराध हो। इसलिए गुरु जी के सामने न तो किसी को सम्मान दे, न तिरस्कार करे, न कुछ करे, उस समय गुरु जी के ऊपर नहीं छोड़ दे। ऐसे ही ठाकुर जी यदि सामने हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग यदि इनको भगवान मानते हैं तो क्या चाहिए? किसी पर हम शासन करेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी को कुछ करेंगे? नहीं, वो सब प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। जो प्रभु मालिक हैं वो सब कुछ करने वाले हैं, हम लोग चुपचाप जा रहे हैं, नहीं तो अब क्या मुक्ति मिले। ऐसा व्यक्ति अर्चन करता है तो वो अर्चन उसका बेकार का है। उसी तरह से ठाकुर जी का चरणामृत है, वैष्णव का चरणामृत है, ठाकुर जी का चरणामृत चरणामृत है और वैष्णव का चरणामृत क्या है? हमारा चरणामृत है, ठाकुर जी का प्रसाद महाप्रसाद है। और यदि सचमुच में उनका कोई प्यारा भक्त हो, सचमुच में, तो वो महाप्रसाद है। जिसको ऐसी बुद्धि नहीं है, अरे ये वैष्णव है ठीक है, किंतु ये कायस्थ जाति के हैं या शूद्र जाति के, ये वैष्णव भक्त है, उच्च कुल के नहीं, ब्राह्मण नहीं। हमारे गुरु जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण भी बहुत ऊंचे ब्राह्मण हैं, कुलिंग ब्राह्मण भट्टाचार्य सत्ताचार्य। ऐसा यदि कोई समझता हो, और आपके गुरु कैसे हैं? आपके गुरु जी तो बनिया हैं कि क्षत्रिय हैं कि शूद्र हैं? ऐसा बुद्धि यदि गुरु में रखता है तो ये नर्क हो गई, उसकी अवज्ञा और उसकी निंदा होती है। ऐसे लोग यदि अर्चन करते हैं तो वो खष्ट में ठीक खाने के बराबर होता है। ऐसे सब चीजें बताएंगे। कहते हैं जैसे ये सब तो लिखा है इसलिए अर्चन नहीं करना, कनिष्ठ अधिकारी अर्चन करते हैं। जिनको वैष्णव का सम्मान का ज्ञान नहीं होता है ठाकुर जी को ही ठाकुर जी कहते हैं। होता ऐसा अधिक है, इसलिए शास्त्रों में सावधानी दी गई। इसका मतलब नहीं है कि अर्चन करने वाला अधिकारी ही गड़बड़ का है और अर्चन नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं है, अर्चन के बिना कल्याण नहीं होगा, किंतु उसमें जो जो दोष है उसे सावधान किया जाए। इसलिए ये नहीं कर रहे हैं ये तुम अर्चन मत करना, अर्चन करो किंतु इनसे इन चीजों को दूर कर। कहते हैं कि ठाकुर जी के अर्चन की तो बात ही क्या है, एक क्षण को भी यदि भगवत बुद्धि से प्रणाम किया गया, उनको भगवत बुद्धि से अर्चन किया गया, सम्मान दिया गया, तो वो सम्मान किसका होगा? भगवत एक कागज है, इतना बड़ा कागज का मूल्य क्या है? इतने बड़े पीस का मूल्य मान लिया कि चार पैसा हो या एक पैसा हो, और उसी के ऊपर में अपने हाथ से पेंसिल से ही एक राधा और कृष्ण की मूर्ति बना दी अपने हाथ से, और बना करके उसी चित्रपट को ऐसा ही बना दिया, एक भाव आ गया, कृष्ण बंसी लेकर के खड़े हैं, पैरों पर पैर रखे हुए हैं और बाएं तरफ अपने राधा का, ठीक से बना नहीं किंतु फिर भी वो एक ऊंचे स्थान पर रख करके और उनको शास्त्रांग बना दिया, दो पैसे का कागज और उसमें थोड़ा सा ऐसा लिख दिया। अब उसको जो प्रणाम करता है, ये प्रणाम कहाँ पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा? वो थोड़े कागज भगवान है या वो क्यों पहुंचेगा? मतलब तो हो तो गया, किंतु वो कागज का टुकड़ा थोड़े को बात है, वो भगवान कैसे हो गया? वो राधा कृष्ण हो गया, पेंसिल का बनाया हुआ और क्या विचार है? सुनो देखो, इसमें ऐसा समझो, भगवान अंतर ज्ञान है, अरे वो तो वहां पर एक छवि है, छवि न भी रहती कुछ और वहां पर मान लीजिए कहीं कोई जा रहा है, भगवान का नाम नहीं लेना है, तो प्रभु आपकी हमारे पर में दया नहीं है, ऐसा कर सकते साष्टांग प्रणाम कर रहा है। देवता जी कोई दुख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, और वहां पर प्रणाम किया था प्रभु आप हमारे पर में, तो वो प्रणाम भगवान क्या नहीं पहुंचेगा। और जहां पर भी वो विग्रह भी है, मूर्ति बना दिया है, ठाकुर जी देखते हैं कि कागज के ऊपर में हमारी छवि अंकित कर रही है, और प्रणाम तो मुझे करना है, हमको कृष्ण समझ करके ये प्रणाम करना है, वहीं से भाव को भाव प्राणी जना कर ग्रहण कर दिया उनको, उसका पूजा जो भगवान साक्षात रूप में जो पूजा करने का फल है वो उसकी है। इसलिए एक तृण को भी भगवान का संबंध ज्ञान करते, जैसे मोर पंख देखा और मूल पंख को साक्षात एकदम दंडवत प्रणाम किया और उसको उठाया पर रखा, यहाँ रखा, किस लिए रखा, मोर पंख के हिसाब से नहीं रखा, मोर कृष्ण का इतना प्यारा ये थी ये मट्टी पर पौन डाल दिया, बस कृष्ण की लीला की स्मृति हो गई और इस पर किस पास यहाँ रखता है, हृदय में रखता है, कहाँ रखू, उसको कोई चीज नहीं मिलती ये कहाँ रखू, भगवान चक उसके भाव को करेगा क्योंकि सर्वं करयामि, बस विग्रह पूजा का तात्पर्य ये है। और उत्तम महापुरुष यदि एक मोर पंख को देख करके भगवान की लीलाओं की पुण्य स्मृति आ जाती है, तो राधा कृष्ण को देख करके महापुरुष को देख करके उनकी स्मृति नहीं आई, उनको साक्षात राधा कृष्ण समझ करके, जो राधा कृष्ण नहीं समझ पाते उन लोगों के लिए भस्म में घी डालना है, राधा कृष्ण की मुक्ति होने पर कितना सुंदर बंसी बजा रहे हैं, राधा जी पास में खड़ी है, बेत लिए हुए हैं, त्रिभंगी खड़े हैं, कैसे भंगी से देख रहे हैं, और तभी तो भगवान का भाव नहीं आए, उन लोगों को ठीक डाल, इसलिए वहां पर मूर्ति पूजा की निंदा यहाँ नहीं है, बल्कि उन भावों की निंदा है जिसको लेकर के वो करते हैं किंतु फर्स्ट चलना, इसलिए कहते हैं कि भगवान की पूजा की तो बात किया, किनकी क्यों भी भगवत भाव से यदि पूजा की जाए तो उसका उसकी जितने भी मनोरथ है वो सोने की जाती है। विशेष करके वैष्णव लोग जिस चीज को देखने से भगवत स्मृति आ जाती है उसको भी प्रणाम, संतों को किस लिए प्रणाम करते हैं, यहाँ के देख ले आईसी कृष्ण वैष्णव प्रधान कौन है, जिसके देखने से ही कृष्ण की स्मृति हृदय में अपने आप आ जाती है और कृष्ण नाम अपने आप आ जाता है। एक होता है मान लिया कोई कृष्ण नाम कहने से जानबूझ करके चिढ़ता है ना, तो उसको देखते ही कृष्ण कृष्ण कहने लगे और चिढ़ने लग गया है, मत कहो मुझे तो लबार का नाम मत लो, तो वहां पर वो आभास हुआ कि हमें किस उद्देश्य से कर रहे हैं, जहां सचमुच में कृष्ण का भाव आ जाए, जैसे मोर पंख को देख करके भक्तों को अपने आप भाव आ जाता है, ऐसे वैष्णव को देखने से कृष्ण का भाव अपने आप आ जाता है, वो जगता है, वो उत्तम महापुरुष ठाकुर है। तो कहते हैं कि जिनके देखने से जिनसे विग्रहों को देखने से भगवत भाव उपस्थित हो जाता है, स्मृति आ जाती है, भला ऐसे विग्रह का पूजन करना कभी निकृष्ट कार्य हो सकता है, ये कभी नहीं, भस्म में घी डालने के समान कभी नहीं हो सकता। हाँ एक बात जरूर, यदि वो सकाम उपासना है, बहुत से लोग ऐसे पूजा करते हैं सकाम भाव वाले, जो निष्काम भाव वाले और प्रेम वाले भक्त लोग नहीं कर सकते, क्या कहा मैंने, बहुत सा ऐसा अवसर होता है जो सकाम भक्त वाले उसका पुत्र मर रहा है रोज ना, अब मरने वाला है, अब वो ठाकुर जी के दरवाजे के सामने जा रहे रोते हुए गदगद होकर के प्रभु हमारे बच्चे को, और अंतर्हृदय से वो बोलता है प्रेम की आकांक्षा है वो ठाकुर जी के सामने खड़ा होकर के ऐसा कहेगा सादर तो उसको आपने आप नहीं आएगा और भावना नहीं आएगी। इसीलिए नारद जी ने कहा वो कोई भय से कोई द्वेष से कोई स्नेह से और कोई भक्ति से हमारी उपासना करता है किंतु जो शत्रु भाव से करता है वो जल्दी तन्मय हो जाता है ना? और भक्ति भाव से तन्मय होने वाला बहुत देर बहुत विलंब लगेगा किंतु शत्रु भाव से एक साजी में तन्मय होता है। किंतु इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम शत्रु भाव से उन्हें तन्मय हो, वो कह रहे हैं जब शत्रु भाव में तन्मय होने से ही इनका ऐसा हो जाता है तो भक्ति भाव से होने से नहीं जाने क्या हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं अरे गोपियां तो काम से हो गई, यदि काम से कोई भगवान के प्रति ऐसा भाव हो जाएगा भाई प्रेम से यदि कोई करे तो फिर न जाने क्या हो जाए। कह रहे हैं साधारण लोग लेना साधारण आदमी नहीं समझता कि प्रेम क्या चीज है। काम वो सब कुछ प्रेम काम के रूप में या प्रेम ही को एक स्त्री से काम काम भाव को प्रेम कर निष्कपट रूप से ये प्रेम करना है। कहाँ निष्कपट और कहाँ प्रेम है ही नहीं, एकदम विशुद्ध काम वो है मोह काम भी नहीं मोह है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई यदि भगवान का किसी भी प्रकार से सकाम भाव से भी पूजा और अर्चन करता है तो उसकी हानि कुछ होगी, एक हानि क्यों होगी विलंब हो जाएगा उसको असल प्रेम लाने में, इसलिए विलंब होगा। वो जो सकाम भाव से प्रभु के लिए जो प्रार्थना की प्रभु उसको कुछ चीज देंगे और उसको भोगाएंगे, गुरु को भोगने में 36,000 वर्ष लग गया और 36,000 बीत गया 36,000 वर्ष के बाद तब उनको बैकुंठ, वो भी बैकुंठ कहाँ मिला ब्रह्मांड के अंतर्गत में और रस भरा प्रेम भरा कोई बैकुंठ नहीं मिली। जरूर कुछ उसमें भी सुख है शांति तो है ही है, निर्विघ्नता है, कोई दुख का लेश नहीं है किंतु अयोध्या में और ब्रज में जो प्रेम का भाव है वो नहीं है। इसलिए सकाम भाव वाले को कोई हानि तो नहीं है किंतु लाभ भी उतना है, बहुत समय बच जाएगा और अपनी कामनाओं को पूरा करने के बाद में तब उसको तो बहुत कोटि कोटि जन्म भी जा सकता है। इसलिए ऐसे कामों में मत लगाओ। तो अर्चन का फल कभी भी जिस किसी भी रूप से तुम करो कामना से करो, अथवा मान लें कि किसी वैष्णव के की निंदा करते हुए या अपमान कर दिया अवज्ञा कर दिया तभी भगवान का अर्चन छोड़ नहीं रहा लगा ही रहा तो क्या होगा। यदि छोड़ा नहीं लगा ही रहा और बीच बीच में अवज्ञा किया तो कभी ना कभी कोई साधु जरूर आएगा दर्शन के लिए तो आएगा और देखेगा तो उसको दया लग जाएगी और उसको बड़े प्रेम से उसका बन करके उसको समझाएगा, उसका विरोधी होकर तो समझाने से नहीं समझेगा इसलिए वो उसका बन जाएगा, उसकी बड़ी प्रशंसा कर देगा वाह तुमको बड़ी ठाकुर जी की सुंदर से सेवा करता है। एक बात है ना यदि कोई वैष्णव आए ना तो ठाकुर जी का प्रसाद देना और उसका सम्मान करना और सब बातें कहेगा समझा देगा बस उसका चित्त क्यों। अरे वैष्णव की जो निंदा किया जिस वैष्णव की निंदा किया वो बड़ा कभी प्रसन्न हो सकता है। ये जो कोई चिंता करता है ये अपने मन के भावना के अनुसार करता है, वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव किसी का अपराधी नहीं होता, जैसे हरिदास ठाकुर जी को 22,000 में मारे जाने पर भी अपराध नहीं किया, फिर नकसपुर में इतना प्रहलाद महाराज जी को सताया तो भी नहीं किया, मेरा भाई थे उसके पति और घर वालों ने उसे क्या नहीं किया किस पर किया कभी अपराध माना। कभी भगवान से प्रार्थना कीजिए प्रभु उनको जरा दंड देना नहीं तो फिर वैष्णव ही नहीं है। इसलिए कोई सी वैष्णव के प्रति उन्होंने अवज्ञा की तो उसको उपेक्षा कर देगा कुछ दिन की किंतु उसका कल्याण काम नहीं करेगा, वो रहेगा जैसे इसका कल्याण उपेक्षा कर दिया, उसे बातचीत नहीं किया, कर दिया नहीं किया, किंतु उसके लिए वो प्रार्थना करता है जैसे किसका भी कल्याण, इसलिए उसकी प्रार्थना से भगवान उसकी प्रार्थना सुन करते कहते कि ये उसके लिए प्रार्थना करता है। वाह, बड़ा दया, बस प्रभु जी रूझ जाते मान लिया कि हमसे किसी ने झगड़ा किया और झगड़ा करके आज खाया नहीं, तो हमने देखा कि भाई उसका मित्र परेशान हो गया, उससे थोड़ा सा उसका मेल है, मैंने परेशानंद को बुलाया, कहा कि भाई उसको जा करके देखो ये खाया कि नहीं, तुम्हारा मित्र है, कहना जैसे तुम नहीं खाएगा तुम्हारा भी नहीं खाएगा और तुम्हारे लिए बड़े दुखी, इसलिए तुम जिससे उसका मेल है उससे, तो हम लोगों का मेल किससे है, उसे बढ़कर तो प्रभु से और किसी से मेल है नहीं। तो वैष्णव लोग जो ऐसे होते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जिसका मंगल, क्योंकि संबंध में आ गया ना, जिसे प्रकार से भी हो अवज्ञा किया तो अभी नहीं संबंध में आया, इसलिए तब कहीं कहीं ऐसा होता है जो वैष्णव तो क्षमा कर दिया किंतु उनकी चरणों की जो धूलि है वो क्षमा नहीं कर, उसको कुछ दंड भोगा दिया, जैसे कुष्ठ व्याधि का हो जाना, अद्भुत रोग का हो जाना और किसी प्रकार का दंड, जैसे गोपाल कपाल का हुआ या और लोगों का है, चक्रवर्ती का हुआ, सरदार ठाकुर का निंदक का हुआ या और सब जगह देखा जाता है ऐसा हो जाता है। भगवान की चरण भूमि सहजे ये तो प्रार्थना कर देते, यदि साधारण हुआ तो उसी और थोड़े से भोगा करके आपके उसको पर लगा, और यदि अपराध नहीं हुआ वैसा तो करो थोड़ी सी अवज्ञा की या गुरु को लघुत को देख करके विचार करें, उसको भगवान की कृपा होती है और संतकरण शुद्ध हो जाता है, रिपेंटेंस करता है, प्राश्चित करता है, पश्चाताप करता है, अधिकांश ऐसा ही होता है। जैसे देखो दोष किया जमलाजी ने, नल कुमार मणिगुरु नारद जी के भागवत में लिखा नहीं है कि क्या अपराध है, गाली दिया होगा, ये बदमाश कहां से आ गया, साले चपाटे जैसे जो सब गालियां ये भी दिया होगा, मतलब जैसे गाली देता है ना उनको होश रहता है, तो वो तो बदहोश थे, मदिरा पान किए हुए थे और उनने सबसे बड़ा भारी बाधा ही उन्हें दिया, तो वो कह दिया ये विचार लफंगा कहां से आ गया, नंदभारत बदमाश रंग में भंग कर दिया, मुझे गाली दिया होगा जरूर, और अवज्ञा की अंत संग पता नारद जी ने सुना, कभी तो कहा इसको कांटा कभी गड़ा नहीं, उसको दूसरे का जीव कैसे मानते, ऐसा जड़ हो गया तनिक भी ज्ञान नहीं, अरे कुबेर का पुत्र होकर के जो शिव जी के अत्यंत परम भक्त हैं, और मैं भी तुम्हारे बाप के यहाँ जाया करता, तुम हमें भी बात जानते हो खूब अच्छी तरह, और तुमने ऐसी बात की, प्रीति गर्भ में उसको शासन किया, अपने लड़के को हम कभी मारते हैं तो किस लिए मारते हैं, विद्वेष भावना से मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं ऐसे जो लंगड़ा अंधा हो जाए आंख फोड़ देंगे, तो उसी तरह से शासन किया और शासन करके उसको अनुभूति का चांस दिया कि तुम 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष पेड़ बने रहो और तुमको उसकी अनुभूति होगी तब तुम समझेगा, सचमुच में ऐसा नहीं, किंतु चूंकि नारद जी का भी संपात था और नारद जी ने उसको अभिसंपात दिया तो नारद जी की दया लग गई, हमने मारा किसी को मार दिया मैंने, किंतु तुरंत दया आ गई, ये नहीं क्या मैंने बड़ी बहादुरी की, इनको मार करके दुरुस्त करके खूब अच्छा था, बस में कहीं नहीं ऐसा, मार करके उसको पीटा, मैं बड़ा कष्ट होता है। क्यों? कोई बात कर दिया तो उसे ऐसा होता। इसने सोचा कि जब दंड दिया तो इसको कुछ देना भी तो चाहिए, जैसे प्रसन्न हो जाए। बच्चे को मार करके मैया बोला हाथ में दे दे, या खाने के लिए रो रहा है ना तो हाथ में लड्डू दे दे, वो शिशकता हुआ रोता हुआ करता हुआ धीरे धीरे चुप होकर के लड्डू दे देगा। धीरे धीरे उसको ऐसे ऐसे थपथपा देगी गोदी में लेकर के, बेटा 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 कह कर माँ को दिया। और फिर जिस चीज़ के लिए वो जिद कर रहा था, जिस चीज़ को देना नहीं चाहती थी, तो वो चीज़ भी दे दी। ऐसे ही इनको दंड दिया, दंड देकर के फिर क्या दिया? अमूल्य भक्ति रत्न दिया, प्रेमा भक्ति पै ब्रज की भक्ति, ऐसे साधुओं का स्वभाव। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि वो वैष्णव की निंदा भी करता है और अज्ञा भी करता है, वैष्णव मेरे परम दया किसी का अपराध ग्रहण शानिक रूप से कुछ उसको दंड भले ही दे रहे हैं, किंतु उसका उपकार जरूर करेंगे कुछ दिनों के बाद भी देखेंगे। किंतु भक्तों में एक चीज है, उसकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निंदा इसलिए कर रहे हैं भक्तों को भगवान का के साथ में पीड़ा करना और भगवान के साथ में खेलना कूदना, भगवान की सेवा करना, इसमें कोई विलंब होता है तो वो सह नहीं सकते। तुरंत भगवान का दर्शन करना चाहते, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, भगवान को आलिंगन करना चाहते, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के लिए दिखा, श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए श्याम बालों को देखा, पैरों की झुरमुट में खड़ा हुआ और त्रिभंग भाव से वो बंसी बजा रहा है और महाप्रभु जी के प्रति आंखों से मानो निकट बुला रहा है। ऐसे महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे खिसक रहा है, जब दौड़े तो वो दर्शन महाप्रभु की याद मिला। किस लिए कर रहे हैं? पाया नहीं इसीलिए ना, तुरंत पाना चाहिए, एक सेकंड की देरी उसे सज्ज नहीं होती है, एक मिनट की देरी हो जाए तो सेवा नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्य है, पूजा जिस ढंग से ये कर रहा है इसके तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे वहां तक सेवा करने, हाँ है इसका जन्म जन्म, किंतु उसकी पूजा व्यर्थ नहीं होती। किसी सकाम भाव से करें, निष्काम भाव से करें, प्रेम से करें, विशेष प्रेम से करें, पूजा का फल जरूर होगा, जरूर फल होगा। इसीलिए वो पूजा का फल तो है, किंतु उसमें जो विलंब हो रहा है, विलंब को वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्र में उसको निंदा की। जहाँ जहाँ दोष है अर्चन में, उस दोषों को दूर करके भक्ति के साथ में भगवान का सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। एक आदमी किसी विग्रह की सेवा कर रहा है और एक आदमी रघुनाथ स्वरूप की भांति भावनामयी सेवा कर रहा है और भावनामयी सेवा करके अधीर हो रहा है, अर्चन में उतनी अधीरता जरूरी है। और विशेष करके यदि वैसा कोई भाव अर्चन में स्थूल वस्तुओं का संग्रह करके तब पूजा करना पड़ता है, कोई न कोई त्रुटि अवश्यंभावी है, चाहे मानसिक हो और चाहे स्थूल हो, कहाँ का वो तुलसी है, भोग में जो दिया गया कहाँ से आया, कोई चीज शुद्ध है कि नहीं है, मन पवित्र है कि नहीं है, ये सब तो अर्चन में विचार होता है। इसलिए उसमें ये सब विचार है उसमें, और नाम हरि नाम में ज्यादा देखो तारक में खाई थे सुई थे जथा तथा नाम, खाने के समय सोते चलते पीते घूमते बैठते किसी भगवान का नाम महाफलदायक, इन सब कारणों से कहीं कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है। फिर कहते हैं इसलिए कहते हैं कि भगवत अर्चन का फल कभी भी तुच्छ नहीं हो सकता, केवल विलंब होने की संभावना है यदि उसमें अवज्ञा हो, वैष्णवों की अवज्ञा हो, निंदा हो और भेद हो तो। शुद्ध आत्मशुद्धि के लिए कहा जाता है मंत्र में, नाहम विप्रो नतम अर्पतिर नाथ वैष्णव, किंतु फिर भी देहात्म बुद्धि जाती है। हम लोग इतना कहते हैं सुनते हैं तो अभी कुछ कह देना अभी क्रोध हो जाए। कह दें किसी काले व्यक्ति को भी जिसको सुंदर देने, तुम सुंदर नहीं, उसका मन कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे ही देहात्म बुद्धि, हम न काले हैं न गोरे हैं, काला गोरा है न काले हैं न गोरे, न नाके हैं न लंबे हैं, बड़े सुंदर उनका सुंदर, किंतु इस देह में आप सुंदर। इसको छोड़ करके मूर्ति पूजा करनी चाहिए, इसको छोड़ करके नाम भी करना चाहिए, देहात्म बुद्धि एक अपराध है ना, किंतु होता है। हम लोग को हरिनाम में या किसी भक्ति के साधन में क्यों देरी होता है, विलंब होता है। वैष्णव निंदा छोड़ सकते हैं, गुरु की अवज्ञा भी छोड़ सकते हैं, कृष्ण नाम के बराबर संकट का नाम नहीं है, ये भी हम सब मान लेंगे, किंतु वो छोड़ना चाहिए, आत्मबुद्धि छोड़ना है ये बड़ा भारी, किंतु जो छोड़ देगा वही महाजन। इसलिए अर्चन का फल कुछ नहीं है। किसी किसी रूप में फलदायक, किसी न किसी रूप में जरूर फलदायक, किंतु ऐसे भावों को लेकर के करने से केवल विलंब होता है। तो उनका कल्याण कैसा होता है, हमने अभी कहा वैष्णव लोग गुणग्राही होते हैं, गुणग्राही न रहे ना तो वैष्णव ही नहीं। इतने आदमी बैठे हैं किसी न किसी रूप में किसी को दोष है, यदि गुरु जी ये देखने लगे कि कंबल का यह लोम जो है, ये लोम निकल रहा है थोड़ा, उसको निकाल दें, तो निकालते निकालते क्या होगा, तो अरे लोम से ही तो कंबल बना है, तो सब निकालते निकालते रहेगा क्या। इसलिए वैष्णव लोग यदि किसी हम लोगों का दोष देखने लग जाए, नहीं थे दोष गुण नहीं पाओ, जब तो हूँ कर विचार, जब आप विचार करेंगे देखेंगे इसका उत्तर हमारे अंदर दोष ही दोष है, जो गुण जैसा दिखता है वो भी दोष ही है। हम लोगों का जैसा गुण जैसा ना, जैसे हमने किसी की प्रशंसा की तो अंतर से हमने प्रशंसा की है न, कि हमने ठट्ठा विद्रुप किया है न क्या किया है, ये कौन जाए। महाभागवत भी किसी की निंदा नहीं कर सकता, यदि महाभागवत होगा और वही प्रशंसा कर सकता है। साधारण लोगों के लिए किसी की प्रशंसा करना है और इतना गति सीमित होना, करोड़ों की सह सुनना, मानी मानव होना, ये बड़ा भारी कठिन है। तो कहते हैं वैष्णव लोग बड़े गुणग्राही, वो साधारण लोगों के दोषों को तरफ नहीं देखते हैं, इसकी तरफ देखते हैं केवल गुणों की तरफ। एक आदमी में हजार दोष है, ठाकुर घर में रसोई घर में गया और बड़े सुंदर स्वादिष्ट रूप से कुछ बनाए, वाह सुंदर तू रसोई बनाता है, उसके साथ साथ में और दूसरा गुरु, यदि नहीं होता ना तो हम लोगों के गुरु वर्ग इतने लोगों को लेकर के जो भजन कर रहे हैं, दो भाई एक माता पिता के एक साथ में नहीं रहता रहते हैं, एक माता से एक पिता से उत्पन्न होने पर भी एक साथ नहीं रहता, और कहा इतने लोगों को विभिन्न विभिन्न रुचि, एकदम तीन और छ का संबंध लेकर, और सब कैसी पति होती है, और उन सब लोगों को लेकर के रखना है, ये साधारण बात है और बड़ा बात। यदि वैष्णव लोग गुणग्राही नहीं होते